पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन विच वंडी हुई है। पशुआं नू लईए, पक्षियां नू लईए, बनस्पति तक नर और मदीन विच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नू देखिए, अस्तूल जगत नू देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नू तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे ए दो ने और दोहां दे ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नूं बहुत सोहणे ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियो, एक गल नूं समझो, जाणो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष, दोहां दा वजूद दोहां करके है। इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि 60% पुरुष है, 40% इस देश मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है कि 60% स्त्री है पर 40% इस देश पुरुष है। साडे देश ने नारी नू अर्ध अंग आख्या है। ये गल वखरी है कि कहण दा लब्बो लहजा अर्थ समय दे नाल बदले। नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इस दे अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश विच है और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है, तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है, मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित ने। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है पर उस पुरुष दे तल ते अधूरी है। माँ बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करदा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उस दा नाम आनंद कारज विवाह निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली, इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च, वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है, देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच पंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है, गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फोखिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है, ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या है, पुरुष आख्या है। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन दा टिकाओ भावना लौंदा है, मन नु सूझबूझ ज्ञान नाल मिलती है, तर्क नाल मिलती है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी, स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबलौंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा, परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उत्ते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग करदे ने स्त्री दा, और स्त्री त्याग करदे पुरुष दा, तो परिवार खत्म होया। ते जद परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नु चलाए मान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਥੂਲ ਤਲ 'ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅਸਥੂਲ ਤਲ 'ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿਵਾਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਟਕੇਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਟਕੇਗੀ, ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨਹੀਣੀ ਹੈ, ਤਰਕਹੀਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਖੰਡ ਅਗਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕਸਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਧਾ ਟੰਟੋਲ ਟਟੋਲ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅੰਧੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੰਧਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਅੰਧੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर विच नहीं बैठ सकेगा, तर्क उहदे पैरां नूं गति देंदा है, भटकांदा है, चल। इस वास्ते कहिंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर दी दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रवान प्रधान रखी है, ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रखती है, पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता है। परबल भावना करके घर वसया रहता है और परबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैल दी जाती है, वधदी जाती है। लेकिन कुछ स्वभावक औगुण भी है स्त्री दे अंदर पुरुष दे अंदर। स्त्री दे अंदर स्वभाव जो औगुण है बड़ी प्रबल ईर्ष्या है, स्त्री दी स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्ष्या है, और इस ईर्ष्या करके ईर्ष्या करके जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है। देखण दिया है बहुते घर मर्दां करके नहीं टुटते, स्त्री दी ईर्ष्या करके जो है टुट जाते ने। स्त्री दा स्त्री नूं बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। सच ते नूं देराणी ते जठाणी परजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नूं सहन करन बर्दाश्त करन। यूरोप दी दुनिया ते सारे परिवार टुट गए ने और एशिया दे बहुते परिवार कल कलेश दे दल दल विच फसे हुए ने स्त्री दी ईर्ष्या करके। पर पुरुष दा तर्क फैलाव इस दे अंदर बड़े प्रबल अहंकार नूं जन्म देंदा है, तो पुरुष दा जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है, बहुत अहंकारी है। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर विच कलेश मचाना स्वभाविक हो जाता है। अहंकार ते जेलसी इसका टकराव किसी वक्त स्त्री ते पुरुष का टकराव हो जाता है और दूरियां नूं जो है जन्म देता है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी होवन, सतपुरुषां तो प्रेरणा लैण वाले होवन, तो फिर दोहें अपने गुणां दी सही वरतों करके परिवार नूं स्वर्ग बना सकदे ने, संसार नूं स्वर्ग बना सकदे ने। प्राचीन जमाने तो लैके हुण तक धार्मिक जगत दे शायद कुछ इन्हां ही कमजोरियां करके स्त्री निंदनी रही है और नरक दी द्वारी कहिंदे रहे ने साडे देश ते आदर्श इते नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देश ते किसी हद तक इस नूं शूद्र मनिया गया है कि जनेऊ पहनण दा अधिकार नहीं रखती, इनू वेद पाठ करन दा अधिकार भी नहीं दिता, और इसनू ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है, शूद्र है। हैरानगी दी गल है महाकवि तुलसी भी इसनू पशुआं दी श्रेणी विच खड़ा करदे ने, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ए पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नूं पशु नूं ताड़दे रहिए तां ठीक रहिंदे ने, इस तरह शूदर नूं ते पशु नूं जिवें ताड़दे आ उस तरह स्त्री नूं ताड़दे रहिए तां ओह ठीक रहिंदी है। पशुआं दी दुनिया विच खड़ा कीता इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश दे प्राचीन ऋषियां ने मुनियां ने, ये घोर नरक दी दुआरी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करते ने लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी इति मोक्ष द्वारी है। इस तो बिना मुक्ति किते हैरानगी मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्होंने नरक द्वारी आख्या उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ए सी कि इस्त्री नूं असी किधरे भी अवतारी दुनिया विच नहीं देख रहे। अज तक जितने अवतार आए करीबन करीबन वो पुरश तन धारण करके आए। जे अपने देश के दे प्राचीन सिरमोहर अवतारी पुरशां नूं देखिए विष्णु ने श्री राम ने श्री कृष्ण ने धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े बड़े भक्त ने ऋषि ने मुनि ने पुरश रूप दे चने। इस्त्रियां दे कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखण नूं नहीं मिली। साहित्य तरह तरह की कला दे जन्मदाते भी पुरश संगतराश चित्रकार कवि दार्शनिक फिलोसफर चोटी दे साइंटिस्ट चोटी दे राजनेतक हर दुनिया दे हर पासे असी पुरश नूं अग्रसर देखते हैं अगे देखते हैं। तो पुराने लोगों को ए तर्क सी कहण वास्ते कि पशु का मतलब है पछड़े होया तो चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है पशु का मतलब है पछड़े होया पुरुष तो पछड़ी हुई है पुरुष दे पीछे है। इस वास्ते आदि काल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पीछे ही चले क्योंकि ये पछड़ी हुई है हर तल ते पछड़ी हुई है हर पक्ष ते पछड़ी हुई है पीछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंघे है दौर लंघे है जिथे स्त्री केवल धन सी घरेलू साजो समान दी तरह वस्तुआ दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी इसदे कोल हाथी ज्यादा ने घोड़े ज्यादा ने मकान ज्यादा ने जमीन ज्यादा है सोना चांदी ज्यादा है तो धनवाना दी गिनती विच ओ भी आउंदा सी इसदे कोल स्त्रियां ज्यादा ने इहदे कोल 400 स्त्रियां ने इहदे कोल 600 स्त्रियां ने दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करने। इस दौर विच भी ऐसे नवाब महाराजे होए ने 400-400 राणियां और 600-600 बेगमा रखण वाले मौजूद और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसे हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन देश स्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो ये जुर्म भी नहीं समझिया जांदा सी। जैसे कोई अपने सोने नूं चिकड़ दे सुट देवे जैसे कोई अपने घर नूं आप ही अग लावे कोई अपनी धन संपदा नूं साड़ देवे तो अपना धन सी आप फूके है कोई जुर्म नहीं। स्त्री एक धन सी खत्म कर देता है कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघे है और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री दे अंदर आत्मा ही नहीं है चेतना ही नहीं है। गर्ज के आदि काल तो स्त्री नूं पशु कहण दा पछड़े होया कहण दा तर्कशील लोगों को जिहड़ा तर्क सी ओए है कि एक कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके अवतारी दुनिया विच नहीं दिखाई देंदी और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री संग तराशी संगीत कला दी दुनिया दे ज्ञान दी दुनिया दे सुधार दी दुनिया दे अवतार दी दुनिया दे पुरुष ही पुरुष अग्गे दिखाई दे रहे ने। इस वास्ते स्त्री दे पछड़े होण दा ये सब तो वड्डा सबूत है ये पछड़ी हुई है ये पछड़ी हुई है। आया धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आपने इस तर्क नो बड़े सोहने ढंग नाल झुठलाया है, परे सुटिया है, ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति से अवतार नु जन्म देने दे लग गई। वो आप किस तरह ग्रंथकार बन गई, उसका समा उसकी शक्ति ते किसी ग्रंथकार नु जन्म देने दे लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आता, ग्रंथकार नहीं आता, साइंटिस्ट नहीं आता, कलाकार नहीं आता, हर स्त्री कलाकार नु अवतार नु संत नु जन्म देने वाली भी नहीं आती। जो किसी संत नु जन्म दे सकी है, वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसी अवतार नु जन्म दे सकी है और अवतार ने किसी ऐसी स्त्री की कुख चुनी है, तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी माँ उतनी ही पूजनीक है, जितना संत पूजनीक है उसकी माँ उतनी ही पूजनीक है, जितना कोई ग्रंथकार चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है उतनी ही उसनु जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है, क्योंकि उसका समा उसकी शक्ति ग्रंथकार नु जो है जन्म देने दे जो है लग गई। बाबा फरीद कहते तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ माँ। जिसने किसे ऐसे पुरुष नु जन्म देता है जिसने अपनी जीवन यात्रा नु सफल कीता है, जो फकीर सी, जो संत सी, जो अवतार सी, इसनु जन्म देता है, पूजन योग है ओ मां, धनता दी योग है ओ मां। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह स्त्री नु पुरुष दे बराबर ते खड़ा कर दिता, अवतार दी बराबरी ते अवतार दी मां नु खड़ा कीता, ग्रंथकार दी बराबरी ते ग्रंथकार दी मां नु खड़ा कीता। और ऐलानिया के आ सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यहूदियां दे धार्मिक मंदिर स्त्री लई बंद ने, इस्लाम दियां मस्जिदां स्त्री लई बंद ने, वेद पाठ स्त्री नहीं कर सकती, जनेऊ स्त्री जो है नहीं पहन सकती। और जैन धर्म ने ते इत्थे तक कह दिता स्त्री शरीर विच स्त्री दे चोले विच मुक्ति नहीं हो सकती, स्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लेके ही मोक्ष गति नो प्राप्त करना होवेगा। स्त्री साधना करे, जप तप करे, उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा, फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनु मुक्ति मिलेगी, स्त्री चोले ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, स्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है और इस दी भावना प्रधान अवतारा नू ग्रंथकारा नू भक्ता नू जन्म देती है। ये महान है, ये पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान।